हरे कृष्णा। तो हम आज 3 मार्च के दिन श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें नए हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव यानी कि जयंती पूर्णिमा 11 तारीख को है और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कलयुग में भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं और भक्त बनकर ये महामंत्र को विश्व को देते हैं और साथ साथ में एक भक्त को भगवान की भक्ति करने के बाद क्या आनंद मिलता है उसका भी अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति जब भक्त लोग करते हैं तो वो जो भक्तों को अनुभव होता है उनकी सेवा करने का, वो अनुभव भगवान को प्राप्त नहीं होता है, केवल भक्तों के अधिकार में। तो जब भगवान राधा रानी को देखते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी उनकी भक्ति करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करती है, जो स्वयं कृष्ण को पता नहीं है कि वो आनंद की व्याख्या क्या है, वो समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं। ये बड़ी ही विचित्र और बड़ी रहस्य की बात है, क्योंकि अभी हमने कई बार पहले भी कहा है कि इतिहास के पन्नों पे किताबों में स्कूल के ये भी अभी भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु एक बंगाल के संत थे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके नृत्य किया करते थे, यही उनका वर्णन है। उसका कारण भी यही है क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये उनके जीवन के कालावधि में जब उन्होंने अवतार लिया उतने समय में उन्होंने कभी भी ये ओपनली जाहिर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। केवल कुछ कुछ समय कुछ कुछ घटनाएं ऐसी है जब बहुत ही प्राइवेट व्यक्तिगत रूप में उन्होंने अपना भगवान का स्थान प्रकट किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु लीला जो है बहुत ही छन्न अवतार कहते हैं उनको, क्योंकि उनका लीला जो है अगर आप उनके व्यक्तित्व को रहस्य को समझते हो कि वो कौन है तो उनकी लीलाओं का पूर्ण आनंद हमको मिल सकता है। अगर हम जानते नहीं कि वो कौन है तो फिर उनके लीलाओं का पूर्ण आनंद जो है हमको नहीं प्राप्त हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है, जैसे श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य जो है भगवान को शरणागत होना, भगवान को पूर्णतः समर्पित होना, यही जीवन का लक्ष्य है। वो बताते हैं सर्वधर्मम परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवद्गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन को बताया है। और जब वो अर्जुन अपने जीवन में अपनाते हैं तो वो कहते हैं नष्टम मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो गीता का जो अंत है वो इस स्थिति पर है कि जीव जब केवल भगवान का कहा मानेंगे और भगवान का कहा हुआ आदेश को पालन करेंगे और जीवन पूर्णतः भगवान के चरण में समर्पित करेंगे। श्रीमद् भागवत जो है वो उन भक्तों के जीवन का चरित्र है जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किया है। ऐसे भक्तों ने कैसे व्यवहार किया, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे उन्होंने भगवद गीता के इस शरणागति को अपने जीवन में अपनाते हुए कैसे जीवन कार्य को चलाया। ध्रुव जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, पांडवों का चरित्र है, भीष्मदेव का चरित्र है, परीक्षित महाराज का चरित्र है, नारद मुनि का चरित्र है, परशुराम जी का चरित्र है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र है, कृष्ण भगवान का चरित्र दशम स्कंद में दिया गया है और करभाजन मुनि और कई प्रकार के संतों का वर्णन है जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। और श्रीमद् भागवत की परिणति यानी भागवत का जो अंतिम सार है वो है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम जिसको हुआ है, ऐसे गोपियों का वर्णन दशम स्कंद के आखिर में आता है। तो चैतन्य चरितामृत जो है, चैतन्य भगवान का जो जीवन चरित्र इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है कि जैसे कि एक शरणागति है और शरणागति से आदमी प्रेम तक पहुंचता है। शरणागति ये भक्ति की शुरुआत है, शरणागति भक्ति का अंत नहीं है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। और शरणागत तक पहुंचने के लिए बहुत नियम का पालन करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, चार नियम पालन करना, सत्संग करना, उपवास करना, एकादशी का धाम की यात्रा करना, संतों की सेवा करना, ये सब करके शरणागति प्राप्त होती है। और शरणागति प्राप्त होने के बाद जो मनुष्य जीवन में करता है उसके बाद में उसका फल यह है कि उसको प्रेम प्राप्त होता है भगवान का। तो श्रीमद् भागवत जो है उसका अंतिम अंडरस्टैंडिंग है भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम। और जो लोग भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं वो एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं इसका सारा वर्णन चैतन्य चरितामृत में आया है। तो श्री चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और ऐसे भक्तों का आदान प्रदान इससे भरा हुआ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत को PhD शास्त्र कहा गया है। अगर भगवद गीता ग्रेजुएशन है तो श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है और चैतन्य चरितामृत PhD है। क्योंकि PhD में क्या होता है, विशेष रूप में बहुत गहराई में किसी विषय पर चर्चा होती है, तो वो विषय है चैतन्य चरितामृत का प्रेम। और ये प्रेम क्या है, भगवान और उनके भक्तों के बीच में का रिश्ता जो है उसका वर्णन है प्रेम। भगवान को भूलते हैं तो व्यक्ति माया पर प्रेम करता है और दर दर के ठोकरे खाता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी की। लेकिन वही जब पुनः भगवान के चरणों में प्रस्थापित होता है तो वहाँ से पहले शरणागति होती है ना। पहले मदन मोहन जी की कृपा से भगवान से संबंध पुनः प्रस्थापित होता है, फिर गोविंद देव की कृपा से भगवान की संबंध प्रस्थापित होने के बाद में सेवा प्राप्त होती है भगवान की। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, अपने इंद्रियों को कैसे भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगाना है वो राधा गोविंद जी हमको अपनी कृपा से सिखाते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं। और जब अपनी सेवा में भगवान के हम परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, वी अचीव परफेक्शन इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो उसको कहते हैं प्रयोजन, मतलब पर्पज। तो क्या पर्पज है, प्रेम। यही जीवन का उद्देश्य है कि पुनः हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। जो प्रेम हम खोकर दुनिया के प्रेम में यहाँ पर आए हैं शरीर धारण करने के लिए और अत्यंत अनेक भोग लेने के लिए, उसको ठुकरा कर जब भगवान के शरण में हम आते हैं तो पुनः हमको प्रेम प्राप्त करने की संभावना होती है। और वो प्रेम क्या चीज़ है ये स्वयं कृष्ण भी जानना चाहते हैं। भक्तों के जीवन में जब प्रेम आता है भगवान के प्रति तो वो जीवन में कैसा आनंद उपभोगते हैं वो जानने के लिए भगवान में उत्सुक हैं। इसलिए भगवान पर अपना भेष बदलते हैं, अपने भगवान का भेष छोड़कर भक्त का भेष पहनते हैं, ये जानने के लिए कि आप और हम क्या अनुभव करते हैं उनकी भक्ति में। इसलिए भक्त का जीवन जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। अगर भगवान और भक्त हमको साथ में मिलते हैं तो पहले किसका दंडवत करना चाहिए, भक्त का ही करना चाहिए, क्योंकि भक्त की ही कृपा से भगवान मिलते हैं और भक्त जो है वो भगवान स्वयं उसकी पूजा करते हैं। आज सुबह मैं सुन रहा था, कल शाम को शायद, कि जैसे ही भक्त अपने जीवन में भगवान पर प्रेम करने लगता है तो भगवान उसे अपने आप को बेच देते हैं, ही सेल्स हिमसेल्फ, उनके वो दास बन जाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उनका गौरव करने का प्रयास करते हैं। भक्त उनका गौरव करने का प्रयास करते हैं तो भगवान के भक्त का गौरव भगवान करने का प्रयास करते हैं। ऐसी ये प्रेम की जो अद्भुत लीला है इन सब का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया है। और चैतन्य चरितामृत जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दो व्यक्तियों से इसका श्रवण किया है। पहले व्यक्ति है मुरारी गुप्ता जी, और मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हैं। हनुमान जी के अवतार होने के नाते उन्होंने भगवान से बाल्यपन में लीला किया, तो बाल्यकाल का जो वर्णन है वो मुरारी गुप्ता ने लिखा था। फिर उनका जो आखी का लीला है उसका जो रिकॉर्डिंग है वो स्वरूप दामोदर जी ने किया था, और स्वरूप दामोदर जी ललिता देवी के अवतार हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भगवान स्वयं भक्त बनकर आते हैं तो उनके जितने भी सखा हैं, राधा रानी हैं, सब सखियां हैं, सब सखा है, सब लोग रामलीला के भक्त हैं, कृष्ण लीला के भक्त हैं, नरसिंह लीला के भक्त हैं, जितने भी लीलाएं भगवान ने अवतार किया है उन सारे अवतारों के जितने भक्त हैं वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु के लीला में भाग लेने के लिए अवतार लेते हैं। प्रहलाद जी ने अवतार लिया है वासुदेव दत्त के रूप में, हनुमान जी ने अवतार लिया है मुरारी गुप्ता के रूप में, नारद मुनि ने अवतार लिया है श्रीवास पंडित के रूप में, महाविष्णु ने अवतार लिया है अद्वैताचार्य के रूप में, स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित बन के आते हैं, ललिता देवी स्वरूप दामोदर, विशाखा देवी रामानंद राय, ऐसे भगवान के जो सासू जी हैं कृष्ण अवतार में जटिला, वो जगदानंद पंडित बन के आते हैं। इस तरह से जो पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो राधा रानी के पिताजी हैं वृषभानु महाराज। ये सब उनको जब पता होता है और जब उनका व्यवहार हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये कितना रहस्यमय चीज है। ये समझना है कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुरारी गुप्ता जी और स्वरूप दामोदर जी इन्होंने जो भी नोट्स बनाए हैं उन सब नोट्स को एकत्रित करके कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है। और स्वरूप दामोदर ने जो भी लेखन किया था उसका अभ्यास रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था और वो रोज प्रवचन किया करते थे राधा कुंड किनारे, और वहाँ पर कृष्णदास कविराज प्रभु जी गोस्वामी जी बैठते थे, उन्होंने नोट्स बनाए थे। हाँ, हम लोग लेक्चर में नोट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग लेक्चर में सो जाते हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें नोट्स बनाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बार सोचा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, क्या फ़ायदा है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि आपका जीवन मेरा है, जो आपका नहीं है वो नष्ट करने का आपको अधिकार कैसे प्राप्त हो गया, आपका शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। तब उन्होंने रोज अपने विरह को शांत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करना आरंभ किया राधा कुंड किनारे बैठ के, और वही कृष्णदास कविराज ने उतार के चैतन्य चरितामृत लिखा है। कितनी सुंदर बात है ये कि अपने आचार्यों ने इतनी मेहनत करके भगवान के चरित्र को संकलित करके हमारे लिए उपलब्ध किया है। फिर व्यास देव के अवतार जो है वृंदावन दास ठाकुर हैं और उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, जैसे हमारा श्रीमद् भागवत है वैसे चैतन्य भागवत है। उसमें अधिक करके भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार के रूप में वर्णन दिया है। बाल लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी है, लेकिन चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार में बड़े रोचक पद्धति से वर्णन उन्होंने किया है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ से हमारी कथा की शुरुआत होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चैतन्य भागवत का वर्णन कर रहे हैं। और वही श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक निवृत्त निकुंज विलासी भगवान जो है वो भक्त बनकर अवतार लेते हैं, और भक्त बनकर अवतार लेते हैं तो अपने अवतार में बाल भी बन जाते हैं, बालक भी बन जाते हैं। और बालक बन जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान बाल रूप बन के यशोदानंद को आनंद दिया, वैसे उन्होंने उनके माता और पिता जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता को भी बहुत आनंद दिया। तो हमने क्या क्या पहले चर्चा किया था, हमने कई लीलाओं का वर्णन पहले भी किया है, बीच में गैप पड़ गया, आप लोग भूल गए उसको। उनके जन्म की लीला वर्णन किया हम लोगों ने, उसके बाद में उनके जातक कर्म जो था, उनके जन्म के बाद कुंडली बनाई गई उसके बारे में वर्णन किया, उनके नामकरण का वर्णन भी किया। हाँ, उनके बाल लीलाओं का वर्णन किया, कैसे वो लोगों को तंग करते थे, कैसे मटके फोड़ते थे घर में जाके, याद है कि कुछ नहीं है, लगता है सब बम्पर जा रहे हैं, मतलब कौन से युग से बात कर रहे हैं आप, हम तो कलयुग में बैठे हैं, आप तो कौन से अलग युग की बात कर रहे हैं। नहीं, या इसी युग की बात कर रहा हूँ, इसी युग में 500 साल पहले जो लीला हुई थी उसी के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु, उनका बचपन का नाम था निमाई, जो नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए, माता के गर्भ से अवतर जन्म नहीं लिया उन्होंने, माता के गर्भ से वो प्रकट हो गए नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए माता ने उनका नाम निमाई रखा सखियों ने मिलकर, पिता ने उनका नाम विश्वम्भर रखा क्योंकि वो पूरे विश्व को पालन करने वाले, ऐसे उनके माता जी के पिताजी यानी कि ग्रैंडफादर उन्होंने बताया था कि ये विश्व को पालन करने वाले परम पुरुषोत्तम हैं, उनका नाम विश्वम्भर रखा गया। इस तरह से जब भगवान बड़े हो गए, हाँ जमकानाथ जी हरे कृष्णा, जब भगवान बड़े हो गए जब चलने लगे तो सबके घर जाने लगे, सबके घर जाकर चोरी करते थे, जो मिलेगा उसको उठा देते, और अगर उठाते हो गए पकड़ते थे कोई उनको तो कहते थे कि नहीं 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 मुझे एक बार माफ़ कर देना, मैं अगली बार नहीं करूँगा ऐसे। अगर घर में गए और चोरी करने कुछ मिला नहीं तो जाके बच्चों को चिमटा निकालते थे, हम बच्चों को रुलाते थे, कभी उनके कान में पानी डालते थे, कभी कुछ कचरा रूम में फेंकते थे उनके, इस प्रकार से सब लोग उनका वेट करते थे, हमारे घर में चोरी करने के लिए आएंगे, राम उनको पकड़ेंगे। ऐसे उन्होंने बहुत लोगों को आनंद दिया। कई बार अगर रसोई में कुछ उनको मिला नहीं खाने के लिए तो जाकर उनके मटके फोड़ देते थे, क्योंकि उन ज़माने में क्या करते थे लोग, चूल्हे पर, लकड़ी के चूल्हे पर गोबर के कंडे लगाकर भोजन बनाते थे मट्टी के बर्तन में। तो सारा कोई स्टील का पीतल का वहाँ बर्तन नहीं था उस समय। रोज़ मट्टी के बर्तन लेना फ्रेश और उसको फेंक देना और कल नए बर्तन बनाना, यह हमारा कल्चर था पहले वाला। तो सबके किचन में जाएंगे तो पूरा मट्टी के बर्तन आपको भरे हुए मिलेंगे पानी के लिए भी वही, धान्य के लिए भी वही, बनाए गए राइस और चावल के लिए भी वही और स्टोर करने के लिए भी वही। तो उसको फोड़ते थे और कुछ कुछ लोग उनको बड़े प्रेम से चावल और उनको कोई मिठाई संदेश, उनको बहुत प्रिय था संदेश। संदेश का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यस, संदेश नाम का पदार्थ जो है उसको आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ वो पेड़ा मतलब मावे का नहीं होता है, वो पनीर जो होता है ना पनीर, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के उसको इलायची और ड्राई फ्रूट डाल के उसको बनाते हैं, संदेश कहते हैं। और संदेश भगवान को बड़ा प्रिय है, श्री कृष्ण भगवान को बड़ा प्रिय था और बालक निमाय को भी बहुत प्रिय था वो। तो सब औरतें जो थी सखियाँ, पड़ोस की सब औरतें थी, बाजू बाजू की सब औरतें थी, वो संदेश बनाकर भगवान को दिया करती थी, कभी चावल के दाने, कभी कुछ मिठाई, कभी संदेश देकर उनको रिझाया करती थी। और सब जगह पर जब वो जोर से रोते थे तो सब लोग आकर हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे, हरी हरी बोलते थे। क्या बोलते थे? हरी हरी। क्या बोलते थे? ऐसे बोलते चैतन्य महाप्रभु रोना बंद कर देते। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सब लोगों को हमेशा हरी हरी बोलने में मग्न कर दिया। एक दिन क्या होता है, दो चोर आते हैं और आप जानते हैं जैसे बालक कृष्ण थे उनके शरीर में बहुत सुंदर सुंदर अलंकार हुआ करते थे, वैसे ही सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा गरीब थे बहुत, लेकिन फिर भी अपने बालक के लिए बहुत सुंदर सुंदर अलंकार पहना करते थे। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं पहनते थे, दागीने पहनते थे उनको, मोतियों की माला पहनते थे, कीमती मोतियों की माला। तो दो चोर आके देखते, अरे ये बालक के बदन में कितने अच्छे अच्छे गहने हैं और ये अकेला सब शहर में घूमता है, इधर उधर अकेले जाता है, यहाँ उसके घर में जाता है, उसके घर में जाता है, यहाँ से वहाँ भागता है, यहाँ से वहाँ कूदता है, इस घर से उस घर में जाता है, उस घर से उस घर में जाता है, तो क्यों ना उसको हम पकड़ लें। उनके हाथ में बहुत सुंदर कंगन थे, पैरों में बहुत सुंदर सुंदर घुंघरू थे, कमर में कमर पट्टा था, बाजू बंद थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर गहने उनके पास थे। तो वो उनको उठा लेते हैं बीच रास्ते से और कहते हैं, अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें बुला रहे हैं। और तुरंत भगवान उनके कंधे पर बैठ जाते हैं। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर जो हैं, उन्होंने भागवत लिखा है चैतन्य भागवत, वो कहते हैं कि कितने भाग्यवान चोर थे वो जिनके कंधे पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बैठे हुए हैं। जो भाग्य किसी देवताओं को प्राप्त नहीं है वो चोर लोगों को प्राप्त है। चैतन्य लीला का दया ही है। एक पता ना, मैं और भूल गया आपको, चैतन्य भगवान का जो लीला है वो सब अति अति करुणा और कृपा से भरा हुआ है। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने स्थान, कोई पात्र है, योग्य है, नहीं है, जगह सही है कि नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। महाप्रभु चैतन्य ने सब पर कृपा किया, अनंत कृपा किया। अब ये चोर है, कोई तपस्या किया है, कोई योग साधना किया है, कि कोई उपवास किया है, कि क्या किया है, कुछ नहीं किया है। केवल चैतन्य महाप्रभु के रूप शरीर पर जो गहने हैं उसको देखकर वो आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हमें अगर भगवान पर भी आकर्षण नहीं है लेकिन भगवान के संबंधित कोई वस्तु है वो भी हमको अच्छी लगती है तो भी हमारा भाग्य खुल जाता है। हाँ, भगवान ने जो कंगन पहना है हमको, वाह कितना बढ़िया कंगन है, अगर हमको इतना भी अच्छा लगा तो भी हमारा जीवन का भाग्य खुल जाता है। अरे वो तो दूर की बात रही है, भगवान को उसको देखना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद अगर आप खाएंगे बोलेंगे समोसा कितना बढ़िया है तो भी हमारा भाग्य खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पण किया हुआ भगवान से संबंधित वस्तु है, इसलिए इतनी कृपा है भगवान के संबंध में। भगवान के संपर्क में जो भी आएगा उसे यही कृपा प्राप्त होगी। तो वो उसको कंधे पर बैठ के लेके जाते हैं, उनका मन में चल रहा है कि अरे इसके कंगन मैं लूंगा, इसके घुघरू मैं लूंगा, इसके गले के माला तुम लेना, ऐसे मन में वो विचार कर रहे हैं। और भगवान की माया इतनी अद्भुत है कि वो रास्ता ही भूल जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि इसको अकेले में अपने घर में लेके जाएंगे अकेले में और वहाँ पर उसको अच्छे संदेश खिलाएंगे और खिलाते खिलाते सब गहने उतार लेंगे उसके। लेकिन उस भगवान की जो भगवान होते हैं ना, जब बालक भी होते हैं तो भगवान ही होते हैं वो। हाँ, उनके पास सड़ ऐश्वर्य, तीन गुण सब शक्तियाँ उनके पास तभी भी होती है जब वो भगवान भी होते, तो है ना, जब जब भी माता के गर्भ में थे छोटे से और पुतना को जब दूध पीने लगे तो उस एक साल की अवस्था में भी उन्होंने पुतना को मार डाला, इतने से बालक थे वो। लेकिन भगवान हर अवस्था में भगवान होते हैं, चाहे वो रेंगते हुए बालक हो या विश्वरूप दर्शन दिखाने वाले हो, लेकिन एक ही होते हैं भगवान। तो वो उनकी मति भ्रष्ट कर देते हैं और वो समझते हैं कि वो उनके घर जा रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता भटका के अपने घर में लेके आते हैं। बीच में वो जब रुकते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं और फिर घूम के निमाई के घर में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अपने घर में आ गए। तो जैसे ही वो उतरते हैं, अपने घर में उतरते हैं, चोरों को लगता है कि वो हमारे घर में, मतलब खुद के घर में आए हैं, तो बड़े ही कुशलता से आगे आते हैं, उनको संदेश खिलाते हैं और देखते हैं कि उतरते ही तुरंत भाग के अपने पिताजी के गोद में भाग जाते हैं। अरे बोले पिताजी कैसे आ गए यहाँ पर, और जैसे ही अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि वो उठा के जा रहे हैं उनको, रास्ते में भी संदेश खिला रहे हैं उनको, तो यहाँ पर सब लोग परेशान है कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, निमाई कहाँ गए निमाई कहाँ गए, सब परेशान है। पड़ोसों की स्त्रियाँ आती हैं, बालक आते हैं, इधर आते हैं, पिताजी माताजी चिंता करते हैं कहाँ गया कहाँ गया, किसी को मालूम नहीं। और इस चक्कर में घूमते घूमते चोर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो उतरते हैं कंधे से, तो कुछ लोग उनको देखते हैं कि दो लोगों के कंधे से उतर के आ रहे हैं, लेकिन वो भगवान मिल गए इस खुशी में इतने पागल रहते हैं कि उनको समझता नहीं कि वो उनको कुछ बुलाएं कुछ करें। एकदम सब औरतें आती हैं, सब बालक आते हैं, उनको अरे हरी बोल मिल गए करके खुशियाँ मनाते हैं। भाग के जगन्नाथ मिश्रा उनको गोद में उठाते हैं और चुम्मा देते हैं। फिर सोचते हैं कहाँ गए थे ये, कहाँ खो गए थे। कुछ कहते अरे हाँ हाँ दो व्यक्ति आए थे उनको लेकर। बोले अरे वो कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने भगवान को ढूंढ के यहाँ पर ला के दिया। तो वो पूछते हैं निमाई तुमको कौन लेके आया। अरे दो हमारे कोई रास्ते में मिले थे, उन्होंने मुझे उठाकर घर पर घर तक लेके आए। मैं जमुना जो गंगा किनारे घूम रहा था तो मैं रास्ता भटक गया था, तो उन्होंने मुझे उठाया और घर आके छोड़ दिया। तो सब सोचते अरे कितने अच्छे लोग थे, उनको प्रेम से फेटा बांधना चाहिए, मतलब सत्कार करना चाहिए उनको। फेटा बांधते मतलब क्या, उनका आदर करना चाहिए। और चोर सोचते हैं कि हमने देवी का पूजा किया था इसलिए आज बच गए हम, देवी की कृपा है, तो आज इतने बड़े लोगों के बीच में हमको पकड़ते तो डंडे पड़ते हमको। उनको लग रहा है कि डंडे पड़ेंगे, उनको लग रहा है फेटा बांधना चाहिए। इस तरह से भगवान जब चाहते हैं तो लोगों को दो प्रकार के माया में फंसा सकते हैं, एक है महामाया और एक है योग माया। योग माया मतलब जिसमें भक्ति रहती है, प्रेम रहता है भगवान के प्रति, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भगवान है। वो सोचते हैं कि बालक है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, मेरा पति है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, इस प्रकार सोचते हैं वो, खेलने वाले मूड में सोचते हैं, तो जानते नहीं कि ये भगवान है। और महामाया का प्रभाव मतलब क्या, उसमें भी जानते नहीं कि भगवान है, लेकिन भगवान का द्वेष करके, भगवान को छोड़कर, भगवान से विभक्त होकर उनकी सेवा में, मतलब अपनी सेवा में लग जाते हैं, वो महामाया है। तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को अगर भक्त बन जाते हैं तो योग माया में डाल सकते हैं वो। जैसे यशोदा मैया को उन्होंने मुँह खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन दिया, फिर यशोदा मैया भूल गए, अरे ये तो मेरा बेटा नहीं है, ये तो मैं उनकी माँ नहीं हूँ, ये तो भगवान है। हाथ जोड़कर तुरंत प्रार्थना करती है, माफ़ी मांगती है, मैंने आपको डांटा डंडा दिखाया कई बार, मैंने आपको कितनी बार कुछ कुछ बोला और आपको डंडा दिखा के डरा दिया, मैंने माफ़ करना, आप तो परब्रह्म हो भगवान हो, मेरी माफ़ी करना। भगवान को अच्छा लगता नहीं है, तुरंत मुँह बंद करते हैं और उनको अपनी माया में फंसा देते हैं और तुरंत वो सब भूल जाते हैं उन्होंने मुँह में क्या देखा। अरे मेरा नन्ना सा बालक है, गले लगा देते हैं। तो जब वो गले लगाते हैं तब उनको भगवान बुला देते हैं कि वो उनके मुँह में ब्रह्मांड का दर्शन किया था। यही महामाया है, यही योग माया है। योग माया मतलब क्या, भक्ति में ही भगवान उनको बुला देते हैं कि वो भगवान है और उनसे माता का निर्भेल प्रेम जो है उसका अनुभव करना चाहते हैं, पिता के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। अगर वो जानते हैं अगर मेरा बेटा भगवान है तो कैसे वो उनके बेटा का प्रेम करेंगे, वो तो आरती उतारेंगे उनकी भगवान के रूप में, डर के से ओ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय मैंने बोलेंगे उसके लिए। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनको बिना किसी कॉन्टेमिनेशन बेसल न होते हुए शुद्ध प्रेम का वो अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए सखा लोग जो है वो जानते नहीं कि उनके भगवान है करके, कंधे पर चढ़ेंगे उनके, बोलेंगे तुम गेम हार गए हो चलो हमको राउंड दे दो, अभी उनके कंधे पर चढ़ जाएंगे और भगवान उनको राउंड देंगे। वन में गेंद गिरेगी तो भगवान ऐसे कमर में पट्टा बांध के पानी में कूदेंगे और पानी में कूदेंगे तो डर जाएंगे, अरे भगवान डूब रहे डरेंगे, रोने लगेंगे। तो कालिया को मारने गए थे जमुना जी के अंदर तो क्या हुआ, यशोदा मैया को बेहोश हो गए, अरे मेरा बेटा मर रहा है, सब ग्वाल बाल भी एकदम डर के मारे एकदम बेहोश हो गए उधर, खाली बलराम जैसे खड़े हैं वहाँ, मालूम है कि हमारा भाई जो है भगवान है, वो कुछ नहीं होगा उसको, अकेले हंस रहे हैं लेकिन सब ग्वाल बाल रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि भगवान है, सोचते कि मेरा मित्र है, मेरा प्यारा मित्र है कन्हैया, इतना बड़ा नाग कि फन में ऐसा अटक गया है, मार देंगे उसको, जहर बात हो जाएगी उसको। माता बोले कि मट्टी मत खाना, मट्टी खाओगे तो रोग होगी तो मर जाओगे। भगवान भी क्या करते हैं, जब बिजली कड़कती है आकाश में तो भाग के गोद में आते हैं, अरे मैया मुझे डर लग रहा है आकाश में क्या हो रहा है। तो जैसे गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाया तो चर्चा होने लगी कि तुम्हारा बेटा कोई बड़ा देवता है, कोई सिद्ध महात्मा है। तो नंद बाबा बोलते हैं, अरे सिद्ध महात्मा है, अरे क्या सिद्ध महात्मा, उसके घर में आके माखन चोरी करता है, ऊपर झूठ भी बोलता है, मट्टी खाता है फिर झूठ बोलता है, फिर आकाश में जब बिजली कड़कती है तो भाग के मैया के गोद में आते हैं, ये क्या महात्मा के लक्षण है? नहीं नहीं करके सब लोग इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि जमीन पर गिर जाते हैं और लोटपोट होते हैं और पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं कि कैसा हमारा कन्हैया जो है बिजली गड़गड़ाने पर भाग भाग के मैया के गोद में आते हैं, और ये लोग उनको महात्मा बोलते हैं। इसी को महामाया, योग माया बोलते हैं, मतलब वो जानते नहीं कि भगवान है। कुछ कुछ लगता है उनको, अरे ये बहुत अजीब बालक है, अरे गिरिराज को उठाया उसने, 7 दिन 7 रात तक उठाया, अरे इतने बड़े अक्षस को मारा इतनी छोटी उम्र के अंदर, लेकिन नहीं फिर भी माखन चोरी करता है, झूठ बोलता है, पहाड़ को देख के डरता है, आकाश में कुछ आवाज़ है तो वो डरता है, अंधेरे में डर जाता है। इसी को योग माया कहते हैं। इसी योग माया के प्रभाव से उन्होंने माता पिता को वो आनंद दिया कि वो खो गए फिर मिल गए, उनका आनंद दिया, और वो सोच रहे हैं कि उनका फेटा बांधना चाहिए जो लोग लेके आए। वो लोग किस प्रभाव में है वो भी जानते नहीं कि भगवान है, लेकिन सोचते कि मैंने दुर्गा देवी का प्रार्थना किया था इसलिए मैं बच गया आज। ऐसे ही अनेक चटपटी लीलाओं से उन्होंने नवद्वीप वासियों को बहुत आनंद दिया। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया उनके घर में, ब्राह्मण बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था, आचार विचार से और साधना से और आध्यात्मिक उन्नति से बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसके पास बाल गोपाल की मूर्ति हुआ करती थी, और जहाँ कहीं भी जाता था वो सब जगह पर यात्रा करता था, सफ़र करता था, कभी एक जगह रहता नहीं था, और जहाँ पर भी रहता था अपने हाथ से वो बाल गोपाल के लिए भोजन बनाकर भोग लगाकर ही पाता था, केवल बाल गोपाल का महाप्रसाद। तो वो जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आता है, गृहस्थ लोगों का कर्तव्य है साधुओं को घर में स्वागत करना, उनको भोजन की व्यवस्था करना, अगर वो तैयार भोजन खाते हैं तो तैयार भोजन खिलाना, नहीं तो अगर बना के खाते तो बनाने की व्यवस्था करना, चूल्हा देना, लकड़ी देना, बर्तन देना और व्यंजन ला के देना, सब व्यवस्था करके उनके बनाने के लिए सुविधा उत्पन्न करना, सबसे पहले स्वागत करना मीठे वचनों से, स्मित हास्य से, बैठने को आसन देना, जल देना, क्षेम कुचल पूछना कैसे आना हुआ, बड़े प्रेम सत्कार करना, तो दक्षिणा देना, ये गृहस्थों का कर्तव्य है, आज भी है, ये मत समझना कि 500 साल पहले था अभी उसका कंसेशन दिया गया, ऐसा नहीं है। हाँ, इट इज़ नॉट कम्युनिटी हेल्थ केयर फॉर कंसेशन, ये गृहस्थों का आज भी कर्तव्य है संतों की सेवा करना। तो जगन्नाथ मिश्रा बड़े श्रेष्ठ गृहस्थ थे, नंद महाराज के अवतार थे वो, और उनकी माता पत्नी जो थी सच्ची माता यशोदा मैया के अवतार थी वो, हर युग में वही कौशल्या और दशरथ थे राम जी के अवतार में, ऐसे हर युग में भगवान के माता पिता जो है वो भगवान के माता पिता बनते आते रहते हैं और लीलाओं को साथ देते रहते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा इस ब्राह्मण की बड़े स्वागत करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं, धोते हैं चरणों को, और फिर वो कहते हैं कि मैं तो केवल अपने हाथ से बना के ही खाता हूँ, तूने बाल गोपाल जी को एक जगह पर अच्छा स्थानापन्न किया, आसन रख के उसके फूलों को अर्पण किया, फिर सब चूल्हा बिला व्यवस्था करके मटके दिए उनको, सब व्यंजन दिए, सब्जी दी, फल दिए, और वो चावल बनाने के लिए बैठ गए, और बड़े प्रेम से उन्होंने गीत गाते हुए बड़े भक्ति भाव से भगवान के लिए चावल का भोग सब्जी के साथ में बनाया और अर्पण करने के लिए तैयार हो गए, वो थाली में रखा, घंटी लेके दंडवत प्रणाम किया, तुलसी रखी, और बड़े प्रेम से बाल गोपाल को पुकारने लगे, हे बाल गोपाल, हे मेरे नाथ, हे गोविंद, आइए आपके लिए भोग लगा रहा हूँ, आप उसको ग्रहण कीजिए। और जैसे घंटी बजा रहे थे वो, घंटी बजाते बजाते ही वहाँ पर निमाई भाग भाग के आते हैं और चावल में हाथ डालते हैं, अपने मुँह में डालते हैं, और खाने लगते हैं उनके सामने ही। तो जैसे ही घंटी लगा कर ऊपर देखते हैं तो अरे बालक, इनके घर का बालक जो है मेरे भोग के अंदर हाथ डाल के खा रहा है। हाय 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 हाय, बालक ने मेरे भोग को भ्रष्ट कर दिया, बालक ने मेरे भोग को भ्रष्ट कर दिया। तुरंत जगन्नाथ मिश्रा भगवा के आते, सची माता भगवा के आते, क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ, ये आपके बालक ने हमारे भोग को अर्पण करने के पहले ही खा के भ्रष्ट कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा तुरंत गुस्सा करते हैं, अरे निमाई इतने उद्दंड हो गए हो, दंडा लेके उसके पीछे रखते हैं। नहीं 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 नहीं, तो बालक है, इसको तो ज्ञान नहीं है, इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी आज शायद मैं चावल खाऊं, ठाकुर जी की इच्छा है, लगती ऐसी है कि आज मैं फल ही खाऊं। तो आप बच्चे को मत डांटो, कोई बात नहीं है, मैं त्रस्त नहीं हो गया हूं, ओके इट्स फाइन। तो फिर भी जगन्नाथ मिश्रा उनको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, महाराज जी ये हमारा बालक जो है छोटा सा है, उद्दंड है, माफ़ करना उसको, अपराध मत लेना, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप दोबारा बना दीजिए। वो कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, अभी मैंने ऑलरेडी इतना देर से एक भोग बनाया, अभी वो भ्रष्ट हो गया, अभी मैं दूसरा भोग बनाने का कोई जरूरत नहीं है, मैं फलाहार खाता हूँ, मैं कई बार यात्रा में मुझे कुछ खाने को मिलता नहीं है, ऐसे लकड़ी और चूल्हा नहीं मिलता है, तो मैं फल ही खा के कंदमूल खा के चला लेता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नहीं नहीं हम आपके घर, आप हमारे घर पर आए हैं, कृपा करके हमारे लिए एक बार और बना दीजिए। तो फिर वो मान जाते हैं और फिर सब सखियाँ आती हैं, सब किचन साफ कर देती हैं उनका, और दोबारा फिर चूल्हा लगाती है। हाँ पुराने ज़माने में ऐसा भी था कि एक चूल्हे में बनाने के बाद में वो चूल्हा उसको डिस्ट्रॉय करते थे और नया चूल्हा बनाते थे, नया लकड़ी, नया सब कुछ और नया ईंट लगाकर नया चूल्हा बनाते थे। सब सखियाँ आई पड़ोस पड़ोस से, सब उन्होंने साफ कर दिया और फिर दोबारा चूल्हा लगा के, कंडे लगा के, सब व्यंजन मटके सब ला के दिए। फिर दोबारा बैठ के महाराज जी पूरे प्रेम से बनाया उन्होंने सब कुछ चावल वावल। तब तक थोड़ा देर रात हो गई थी, बीच में वो बोलते हैं अरे सखियों ये सब ये बालक को पकड़ के रखना, हाँ यहाँ इस घर में अभी आएगा वापस खाने के लिए, तो आप अपने घर में लेके जाना। तो पड़ोस के घर में लेके जाते हैं और पूछते हैं क्यों रे, तुमने ब्राह्मण का भोग खाया, तुम जानते हो ब्राह्मण किस जाति का है? और ब्राह्मण कह रहे अपने आप को, बल्कि जानते हो तुम किस घर के आया, वो पता नहीं किसी जाति का होगा, तुमने उसका अन्न खा लिया, तुम्हारी जात भ्रष्ट हो गई, तुम तो ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हारी जात आज भ्रष्ट हो गई, ऐसे करके उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं मैं क्या करूं, बोल रहे हैं वो बता रहे हैं क्यों गया उनको खाने के लिए, बोलते क्या करूं वो तो मुझे पुकारते हैं इसलिए मैं गया, बार बार मुझे पुकारते हैं। तो उनको लगा कि बालक है इसको क्या समझता है, लेकिन वो सच बता रहे थे, वो सच बता रहे थे कि मैं गोपाल हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं उनका इष्ट देव हूँ, मुझे ही वो पुकारते हैं, मुझे ही भोग लगाते हैं, बार बार मुझे भोग लगा रहे हैं और मुझे पुकार रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन उनको लगता है, उनको समझ में नहीं आता नहीं, ये भी योग माया है, वो सुन रहे हैं सत्य बात सुन रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। तो वो उनको बात बात में रिझाते हैं, सब लोग हंसी बजा करते हैं, तालियां बजाते हैं और बीच में से ये खिसक जाते हैं, हंसी मजाक में उनको लगाते हैं और खिसक जाते हैं। और जैसे ही दोबारा भोग बनता है और घंटी बजती है, ये उनमें के उनसे बीच में से ही खिसक जाते हैं, उनको पता भी चलता नहीं, वो हंसते रह जाते हैं और आते हैं फिर दोबारा हाथ डालते हैं, वो घंटी बजा के गोपाल का मंत्र बोल रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं आइए हमारी भोग के लीजिए, और पुनः हाथ डालते हैं, एक हाथ से अपने दोनों हाथ से खा रहे हैं चावल को, फिर उठते हैं हाय हाय मेरे भोग को भ्रष्ट कर दिया, मेरे भोग को भ्रष्ट कर दिया। सच्ची माता हो जगन्नाथ मिश्रा भाग के आते हैं, देखते हैं फिर अपना बालक जो है दोनों हाथ में चावल लेके खा रहा है उसके सामने, ब्राह्मण परेशान हो गए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि बाल गोपाल की तो आज निश्चित ही इच्छा यही है कि मैं फल ही खा के रहूं, क्यों दोबारा बनाने की जरूरत थी, मैं संतुष्ट हूं, बाल गोपाल की इच्छा नहीं है तो मैं संतुष्ट हूं, ये सिद्ध हो गया अभी बाल गोपाल की इच्छा नहीं है कि मैं आज चावल खाऊं, मुझे आप फल ला के दीजिए। तो जगन्नाथ मिश्रा इतने दुखी होते हैं दंडा लेके बच्चे के पीछे भागते हैं और निमाय सब जगह भाग रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा उनके पीछे भाग रहे हैं। और फिर वापस आते हैं तो जगन्नाथ मिश्रा का जो बड़ा लड़का है विश्वरूप, चेतन महाप्रभु का बड़ा भाई, निमाई का बड़ा भाई, 8 कन्याओं के जन्म होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उनको विश्वरूप प्राप्त होते हैं पुत्र के रूप में, वो नित्यानंद बलराम के अंशावतार हैं। वो आते हैं, वो इतने सुंदर थे जैसे कि मानो भगवान के 6 ऐश्वर्य उनकी भुजाओं में समाविष्ट थे। उनको देखते ही ये जो उद्विग्नता है कि दो बार भोग बना के खराब हो गया, ये उद्विग्नता वो ब्राह्मण भूल जाते हैं। इतना सुंदर मुखकमल है जैसे कि मानो सूर्य का प्रकाश उनके मुंह से आ रहा हो, उनके हाथ उनकी भुजाएं जो है वो घुटने तक लंबी हैं, बड़े शांत चित्त से वो चल के आ रहे हैं, स्मित हास्य उनके चेहरे पर है, और वो आते हैं और बड़े ही मधुर भाषण से ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि दो बार मेरे छोटे भाई ने आपके भोग को भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको विनती करता हूँ कि आप तीसरी बार बनाइए। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि दो बार बनाकर अभी रात बीच रात दो प्रहर हो चुके हैं, मतलब हमारे तरफ से एक बज रहा होगा शायद, दो प्रहर मतलब 6 से 9, 9 से 12, दो प्रहर खत्म हो चुके हैं, तीसरा प्रहर शुरू हो चुका है, ये कोई समय भोजन बनाने का नहीं है ये सोने का समय है, तो मैं भोजन कैसे बनाऊँ इसमें। और बीच में प्रश्न करते हैं, ये किसका बालक है, ये कहाँ से आया है? तो लोग कान में बोलते हैं कि ये जगन्नाथ मिश्रा का ज्येष्ठ पुत्र है। उनको देखकर मोहित हो जाते हैं, फिर दोबारा वो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको हृदय से विनती करता हूँ कि हमारे घर में आप गोपाल के लिए आपके तीसरी बार भोग बनाइए। कोई बात नहीं है, कोई समय गलत नहीं होता है भगवान की भक्ति करने के लिए, आप उनको रिझाने के लिए एक और मेरे लिए, मेरे कहने के लिए एक बार आप बना दीजिए। तो उनके मधुर भाष्य को सुनकर मोहित होकर वो ब्राह्मण जो है वो तीसरी बार भोजन बनाना आरंभ कर देते हैं, दो प्रहर खत्म होने के बाद में। और इस बार जगन्नाथ मिश्रा सची देवी को कहते हैं कि इसको अभी आप बाहर वाले घर जाकर, मतलब हमारे घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में जाकर बंद कर दीजिए, और मैं डंडा लेकर उसी दरवाजे पर पहरे के लिए बटूंगा कि ताकि ये वहां से निकल न पाए, क्योंकि पिछली बार हमने सोचा था कि सखियां उनका ध्यान रखेंगी, लेकिन उनको भी फंसा कर ये निकल गया वहां से। इस बार मैं स्वयं जिस घर में सखियां लेकर उसको बिठाएंगी उसके दरवाजे पर बाहर से घड़ी लगाकर मैं स्वयं बैठूंगा। बीच रात हो गई है, दो प्रहर के बाद की बात है, और सखियां कहते हैं कोई चिंता मत करना, हम इनको सुला देंगे अच्छी तरह से। तो लोरियां गाते हैं, गीत गाते हैं, और उनके बीच में ही, सबके बीच में निमाई जो है, बालक निमाई आराम से सो जाते हैं। सब लोग इन्फॉर्म करते हैं कि निमाई सो गया, अभी कोई चिंता की बात नहीं। जगन्नाथ मिश्रा भी आश्वस्त हो जाते हैं कि अभी कोई चिंता की बात नहीं, बालक सो गया है। तो भी एकदम से ऐसे होते ना पहले, एकदम तो ऐसे हो जाते, रिलैक्स, अभी कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पर बीच रात में तीसरे प्रहर में इनका चावल बनता है, फिर दोबारा भोग बनता है, हाँ, और फिर दोबारा वो थाली लगाते हैं, तुलसी डालते हैं, घंटी लेते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और हृदय से बीच रात में, हे गोपाल आइए मेरे भोग का ग्रहण कीजिए। तो अंतर्यामी परम पुरुषोत्तम जो है वो सो रहा है बालक के रूप में, लेकिन जानता है कि मेरा भक्त पुकार रहा है, तो वहाँ से सोए हुए हैं उनके बीच में। फिर से योग माया के प्रभाव से सब लोगों को, सब सखियों को, सच्ची माता को, जगन्नाथ मिश्रा को जो डंडा लेकर बाहर बैठे हैं, सब लोग गहरी नींद में खो जाते हैं। जैसे वसुदेव जी निकल रहे थे उनको लेकर कंस के कारागृह से, तभी योग माया के प्रभाव से सारे पहरेदारों को बहुत गहरी नींद आई थी, उसी प्रकार से सब लोग गहरी नींद के प्रभाव में एकदम व्यस्त होकर जब सो रहे थे, तब निमाई जो है प्रकट हो जाते हैं, और फिर तीसरी बार हाथ डाल के मुंह में डालते हैं। तो रात को बीच में हाय 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 कर पुकारते हैं, फिर मेरा बालक ने भोग भ्रष्ट किया, लेकिन इस बार सुनने के लिए और दौड़ के आने के लिए कोई नहीं रहता है, सब लोग महानिद्रा के प्रभाव में व्यस्त रहते हैं। तो बालक कहते हैं, अरे हाय हाय क्यों बोल रहे हो, हर बार मुझे पुकारते हो, मेरा नाम लेते हो, और मैं हर बार तुम्हारी पुकार को सुनते हुए व्याकुल होकर कुछ भाग भाग के आता हूँ, फिर तुम हाय हाय बोलते हो, ये कैसे तुम ब्राह्मण हो? फिर वो कहते हैं, अरे तुम्हें याद नहीं है, मैं ही तुम्हारा इष्ट देव गोपाल हूँ, और जन्म जन्मांतर में तुम्हारे हाथ का मैंने भोग खाया है। नंद बाबा के घर में भी तुम ब्राह्मण बन के आए थे तीर्थ यात्रा करते हुए, तब भी मैंने तुम्हारे भोग को खाया है, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। भगवान कहते हैं ना, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम देमे जनाधिपा, हाँ आगे क्या बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि सारे जो योद्धा हैं ये पहले भी थे और आज भी हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो ब्राह्मण को यही बता रहे हैं कि तुम जन्म जन्मांतर के मेरे सेवक हो, ब्राह्मण के रूप में तीर्थ यात्रा करते करते कौशल्या के दरबार में भी आए थे, नंद बाबा के घर में भी आए थे, और अभी भी यहाँ पर आए हो, मैं वही गोपाल हूँ। और उनके आंखों के सामने अचानक निमाई उनको अष्टभुज कृष्ण भगवान का दर्शन देते हैं। कितनी भुजाएं उनकी है, 8 भुजाएं, सांवले रंग का मोर मुकुट धारण किए हुए, कान में मकर कुंडल, गले में वैजयंती माला, छाती पर श्री वत्स का चिन्ह, और कौस्तुभ मणि, गले में कमर पट्टा घंटी के साथ में, पाँव में घुंघरू, हाथ में कंगन, बाजूबंद, ऐसा सुंदर श्रृंगार किए हुए सांवले रंग के श्री किशोर कृष्ण भगवान उनके सामने दर्शन देते हैं आठ भुजाओं के साथ में। चार भुजा में क्या है? शंख, चक्र, पद्म और गदा। बाकी चार भुजा में क्या है? दो भुजा से बांसुरी बजा रहे हैं और एक भुजा में मक्खन है, दूसरे हाथ से चाट रहे हैं। ऐसे आठ भुजाओं का काम चल रहा है। दो भुजा विष्णु की है, चार भुजा विष्णु की है, शंख, चक्र, पद्म, गदा। लेकिन चार भुजा जो है बाल कृष्ण की दो है, बड़े कृष्ण की दो है। बड़े कृष्ण कौन सी है? जो बांसुरी बजा रहे हैं। बाल कृष्ण की कौन सी है? जो माखन चाट रहे हैं। वो देखकर जो ब्राह्मण है इतना आश्चर्य होता है उसको कि आश्चर्य और आनंद से उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो बेहोश हो जाता है और देखता है कि इनके पीछे गाय भी खड़ी है। फिर उठता है, फिर देखता है कि उनके पीछे कदम का वृक्ष प्रकट हो गया है, फिर मोर प्रकट हो गया है, बंदर प्रकट हो गए हैं, तोता, मैना, कोयल, वृंदावन धाम, पूरा जमुना नदी, सारा सारे वन उनके आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। और जितनी बार उठता है बेहोश होकर उतना और नई नई वस्तु उसको वृंदावन की नजर आती है और उनके आंखों के सामने श्री गोपाल, उनकी गायें, उनके ग्वाल बाल, उनकी गोपियां, उनके माता पिता, श्री वृंदावन धाम पूरा प्रकट होता है। तो बार बार वो दोबारा बार बार बेहोश होकर गिर जाता है। उसके आंखों से अश्रु बहते हैं नदी की तरह, शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। वो दो आंखों से भगवान का वो दिव्य धाम को ग्रहण नहीं कर सकता है, पी रहा है नेत्रों से दर्शन को, पी रहा है लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो रही है। तो फिर दोबारा बालक निमाई के रूप में आ जाते हैं, वही हाथ से चावल खा रहे हैं। वह कहते हैं ये रहस्य की बात है, ये आपको किसी को बताना नहीं। उसको लगता है कि अभी मैं जाके जगन्नाथ मिश्रा को बता दूं कि तुम्हारे घर में परम ब्रह्म ने जन्म लिया है, तुम बड़े भाग्यवान हो। उसको बड़ी इच्छा होती है, लेकिन भगवान कहते हैं ये तुम्हें किसी को बताना नहीं है, ये रहस्य की बात है। मैंने केवल बीच रात में सबको सुलाकर तुमको अकेले को दर्शन दिया है ये बताने के लिए कि मैं वही तुम्हारा इष्ट देव हूँ श्री कृष्ण। लेकिन तुम्हें अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, इसलिए तुम यहीं रहो और यहीं से रोज आकर मेरा दर्शन किया करो, लेकिन ये रहस्य कि मैं कृष्ण हूँ ये किसी को बताना नहीं है। तो ब्राह्मण जो है, और कुछ देर बाद में ये सब कहने के बाद में बालक निमाई अंतर्धान हो जाते हैं, मतलब फिर से सोने की जगह पर सो रहे हैं। और ये रात को जो है ब्राह्मण जो है सारा प्रसाद जो है शरीर को मल लेता है, पूरा शरीर पर भगवान का प्रसाद है ना, वो भगवान ने अपने दिव्य हाथों से उनकी आंखों के सामने खाया है तो पूरे शरीर में मल लेता है, पूरे खा रहा है, शरीर मल रहा है, मुंह मल रहा है सब जगह पे, और नाच कर कूद कर गोपाल गोपाल मेरे गोविंद करके पुकार रहा है। और ये पुकार सुन के सब लोग जग जाते हैं और भाग के आते हैं। महाराज जी क्या हो गया, दोबारा कष्ट हो गया? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, एकदम बढ़िया है सब, भगवान ने प्रसाद किया, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। तुरंत सब अपना शरीर को साफ कर लेते हैं उनको देखते हुए, क्योंकि बोलेंगे ना ऐसा कैसे हो गया आपको, आप जो मुँह से खा रहे हैं कि सब शरीर को लगा रहे हैं, आश्चर्य होगा ना उनको देखकर। फिर दो तीन दिन चार दिन वहीं रहते हैं उनके पास में, और आप सोच सकते ना कि आपको किसी बड़े रहस्य का पता चला हुआ है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। देख रहे हैं कि बालक डोल रहा है इनके घर पे, माता उनको गोद खिला रही है, पिताओं को डांट रहे हैं वो, अरे तुम्हारे घर में भगवान है, इसे बताने का उनको दिल कर रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वादा किया था उनसे कि नहीं आपको बोलना है किसी को। इस तरह से पूरे जीवन भर वो सब देश देश की यात्रा करना छोड़कर नवद्वीप धाम में ही रह जाते हैं और रोज भिक्षा मांग के खाते हैं और रोज दिन में एक बार आकर बालक का दर्शन करते हैं और अपने हृदय में इस रहस्य को रखते हैं, किसी को बताते नहीं। तो ये जो कथा है, ये कथा वेदों में बहुत ही रहस्यमय रीति से उसका वर्णन किया गया है। और जो भी ये कथा सुनता है, जैसे आप लोग सब लोगों ने सुना है, कोई लोग जगे थे कोई लोग नहीं जगे हैं, मुझे लगता है सब लोग जग रहे होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, उनके लिए फलश्रुति क्या बताई गई है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति दृढ़ निष्ठा पूर्वक भक्ति प्राप्त होगी जो ये कथा को श्रवण करेगा। हरि बोल। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं चल रही हैं। अभी 11 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। आज तारीख क्या है? 4 तारीख है ना, 3 तारीख है, तो अगले मंगलवार को 10 तारीख है। तो 10 तारीख को भी हम आपको चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। हाँ, और आप हमको बार बार SMS करने को मजबूर नहीं करेंगे, उसके पहले ही आके बैठेंगे 3 बजे यहाँ पर, ये आपको वादा करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वादा नहीं पूरा करेंगे तो हम आपको नाश नहीं करेंगे, चिंता मत करना, लेकिन आपको ये वादा पूरा करना है। उसके बाद में 17 तारीख को मंगलवार है और उस दिन हमारे हॉस्पिटल में हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, ये हम कथा अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले से ही आपका भाव जो है वो तैयार हो जाए चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार के रहस्य को समझने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसका रहस्य को अपने जीवन में उतारने के लिए, कि कैसे महाप्रभु चैतन्य की लीलाओं को समझना बहुत जीवन में आवश्यक है। इसलिए हम ये पहले से ही ये जो है कथाओं को उठा रहे हैं ताकि आप सब लोगों को उसका आनंद प्राप्त हो। ये दिव्य लीला जो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, वो कहते हैं कि मेरा इतना परम भाग्य है कि मैं ये वर्णन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ऐसे वो कह रहे हैं। और बार बार कहते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, इसी अभिलाषा से मैं इस वर्णन को गा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। क्योंकि ये सब पद्य है, एक काव्य रूप में उन्होंने रचना किया है और इस काव्य को वो गा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं को। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं को सुनने का मौका मिल रहा है, ये बड़े भाग्य की बात है। क्योंकि केवल इन लीलाओं को सुनने से मात्र से ही हृदय में दृढ़ निश्चय भक्ति उत्पन्न होती है, यही इसका फलसार है। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति होगा, धन संपत्ति से समृद्ध हो जाएंगे आप, ऐसा कुछ फलश्रुति नहीं है इसका, क्योंकि ये अमलम पुराणम है। इसमें कोई भौतिकता नहीं है, कोई पैसा, कोई अच्छा भौतिक समृद्धि प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। केवल श्रवण मात्र से आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जो अनंत कृपामयी है, अनंत करुणामय भगवान है, अनंत दयामय भगवान है, उनकी लीलाओं को कहते हैं औदार्य लीला, यानी कि बड़ी उदार लीला करते हैं वो। उदार का मतलब क्या है, बड़ी उदारता से अपनी कृपा को सबको बांट देते हैं। कृष्ण भगवान की लीला जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम लीला है, केवल जो शरण प्राप्त करेगा उसी को वो कृपा करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु औदार्य लीला करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कोई योग्य भी नहीं होगा, कोई पापी भी होगा, उस पर भी वो कृपा करते हैं। तो इसलिए ये लीलाओं को श्रवण करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इन लीलाओं को श्रवण करते ही सहजता से ही पापी के हृदय में भी भगवान की भक्ति का उदय होता है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा।